साथियों से मोह करने पर, वृंदावन की लता पताओं से मोह करने पर, प्रीति करने पर स्वरूप शक्ति की समाराधना हो रही है, वह त्रिगुणात्मिका बहिरंगा शक्ति की समाराधना नहीं हो रही है। स्वरूप शक्ति ही बंधन को दूर करने वाली है, त्रिगुणात्मिका शक्ति बंधन को दूर करने वाली नहीं है, वह बंधन को दूर करने का केवल द्वार मात्र है। शरीर मिला है तो शरीर के माध्यम से एक साधन के रूप में, इस शरीर के माध्यम से भगवत भजन किया जाएगा, वह इस शरीर में ही चिन्मय शरीर को स्थापित करने का कहीं एक द्वार मात्र है। परंतु तो जो भगवत चरणारविंद को प्राप्त कराने वाली जो वस्तु है, वह तो चिन्मय शरीर ही है, अंतचिंतित देह ही है, उस अंतचिंतित देह के द्वारा भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होगी। अतः आपने भले श्री कृष्ण को पुत्र रूप में पूजन किया, पुत्र रूप में स्नेह किया, परंतु स्वरूप शक्ति के प्रभाव से आपके संसार बंधन तो दूर है ही। बाबा को तो वैसे भी संसार बंधन नहीं है, बाबा को तो होगा ही कहां से, नित्य परकर है। परंतु समझाने के लिए कह सकते हैं, श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि किम बाब सिस्टम युवियोर सुकृत्यम, बोले बाबा आपके लिए कौन सा सुकृत्य बाकी रह गया, क्योंकि आप तो स्वरूप शक्ति के भी आधार सर्वाश्रय श्री कृष्ण के साथ में प्रीति करने वाले हैं। जो स्वरूप शक्ति से प्रीति करता है उसे बंधन की निवृत्ति तो अपने आप ही प्राप्त है। इसलिए आप सभी का धन्य धन्य जीवन, जीवन को धन्य करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। बाबा तो हंस दिए, बोले उधो कोई नई बात तो तू कह नहीं रहा है। भैया मैं तो कन्हैया ने जब से जन्म लिया तब से देख रहा हूं कि यहां ब्रज में जो भी आए वो मेरे बेटा को ईश्वर कहता हुआ ही आता है, पूजा करते हुए ही आता है। वरुण देवता के यहां पर गया, वो कन्हैया की ईश्वर रूप में पूजा कर रहे थे। इंद्र आया, इंद्र चरणों में प्रणाम कर रहा है, वंदना कर रहा है। सब सखाओं ने आ करके मुझसे कहा, कन्हैया छोटा सा बालक था, उसने यमलाज इन वृक्षों को गिरा दिया। छोटे छोटे बालकों ने कहा कि बाबा हमने अपनी आंखों से देखा, यहां से दो पुरुष उत्पन्न हुए थे और उन्होंने कन्हैया की स्तुति की कि भरे आप ईश्वर हो। यहां पर ब्रह्मा आए, सारे लोग आप कहते हैं कि ब्रह्मा कन्हैया गैया चरा करके जिस समय लौटता है उस समय मार्ग में ब्रह्मा शिव इंद्र सब खड़े हो जाते हैं और वन्यमान चरणों पतिवृद्धि श्री युगल गीत में वर्णन आया। वो कन्हैया जिस समय गैया चरा करके आता है उस समय ब्रह्मादिक देवता मार्ग में खड़े हो जाते हैं, कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कन्हैया उनसे बोलते हुए आता है, अब भाई वृद्धजन यदि कहीं रास्ते में प्रणाम करें तो दो मिनट रुकना भी पड़ता है, इससे कन्हैया को आने में लौट करके वन से गोष्ठ में आने में विलंब हो जाता है। हमको बड़ा दुख होता है कि कन्हैया अभी तक नहीं आया, कब कन्हैया अभी तक नहीं आया। परंतु कन्हैया को सब जने प्रणाम करते हैं तो कोई नई बात नहीं कह रहा है तू कि कन्हैया ईश्वर है, ये बात बहुत सुन चुके। अब हम किस किस को समझाएं, किस किस के साथ में मगजमारी करें कि भाई मेरा बेटा ईश्वर नहीं है, मेरा बेटा तो मेरा बेटा है। इसके गुण ही ऐसे हैं, जन्मपत्री के गुण है कि नारायण ने इसमें अपनी शक्ति स्थापित कर ली है। कुछ भी समझ लो, जो भी जैसे समझे, मन ने रामम च कृष्णम च प्राप्तो हि सर्वोत्तम, राम कृष्ण ही मेरे बेटा में, रामकृष्ण में ही सर्वोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण वे आकर के कहीं अवस्थित हो गए हैं, उनने अपनी कोई शक्ति स्थापित कर दी होगी। जब उनको कोई अद्भुत कार्य करना हो, उनको पृथ्वी के भार को दूर करना हो, श्री नारायण असुरों को मार देते हैं मेरे बेटा को माध्यम बना करके। मेरा बेटा थोड़ी मारता है, मारते हैं नारायण। सिद्धांत बिल्कुल ठीक, सिद्धांत में कहीं गड़बड़ नहीं, क्योंकि असुर संहार करना यह कृष्ण का काम नहीं है, असुर संहार करना यह विष्णु का कार्य है। देवताओं ने जो प्रार्थना की पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री विष्णु से की थी, क्षीरोदशाही से प्रार्थना की थी। श्री कृष्ण तो लीला रस का आस्वादन करने के लिए अवतरित हुए हैं, सिद्धांत अपनी जगह बिल्कुल ठीक, परंतु बाबा उस सिद्धांत को लीला में अनुभव कर रहे हैं कि नारायण मेरे पुत्र के द्वारा कोई अद्भुत अद्भुत कार्य करा लेते हैं, दुर्लभ दुर्लभ कार्य करा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मुंह कम करो तो भाषासन उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? मेरे दुग्धमुख बालक के द्वारा यदि वे वृक्षों को खड़वा दे, दुग्धमुख बालक के द्वारा पूतना को मरवा दे, दुग्धमुख बालक के द्वारा यदि तृणावर्त का वध करवा दे, दुग्धमुख बालक के द्वारा दारानल को बुझा दे, दुग्धमुख बालक के द्वारा काली जैसे महाविषैले सर्प को भी निर्विष कर दे, कौन सी बड़ी बात? ये सब नारायण की कृपा है, कोई अद्भुत प्रभाव है। मेरे बेटा का ये गुण नहीं है, मेरा बेटा तो मेरा ही बेटा है। मेरे बेटा को जो तुम कह रहे हो सब ठीक है, परंतु तो ये बात हरेक से समझाऊं तो कौन मगजमारी करे? तुझे जो कहना हो वो तू कहता रहे। उद्धव जी ने इतना ब्रह्मोपदेश प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है। जहां वे निर्गुण निराकार होकर के केवल अपनी अंग कांति को प्रकट कर रहे हैं, अपने स्वरूप को कृपावश प्रकट नहीं कर रहे हैं, अभी कृपा करके प्रकट नहीं कर रहे हैं, वह उनका ब्रह्म स्वरूप है। जहां पर वे निर्गुण साकार होकर के अपनी शक्तियों का किंचित प्रकाशन करते हुए विद्यमान है, वे ही परमात्मा होकर के अंतर्यामी होकर के विराजमान। जहां वे अपनी संपूर्ण शक्तियों के सहित भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के अपने आप को प्रकट करते हुए विद्यमान है, वहां वे ही भगवान होकर के विराजमान है। ब्रह्मेत परमात्मेति भगवान शब्दते। जहां शक्ति शक्तिमान अभिव्यक्त होकर के विराजमान है वह उनका ब्रह्म स्वरूप है। जहां विविक्त शक्ति शक्तिमान स्वरूप होकर के शक्ति और शक्तिमान अलग अलग होकर के पृथक पृथक रूप से दिखते हुए विराजमान है वही उनका भगवान स्वरूप है। जहां पर किंचित शक्तियों का प्रकाशन है वह उनका परमात्मा स्वरूप है। परंतु ये बात तू कह रहा है कहता रहे, बाबा इन सारी बातों को नहीं समझ रहे हैं। बाबा तो समझते हैं मेरा बेटा मेरा ही। श्री उद्धव जी ने कृष्ण के ब्रह्म रूप का वर्णन किया, कृष्ण के परमात्मा रूप का वर्णन किया, कृष्ण के भगवान रूप का वर्णन किया, परंतु तो बाबा कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो मेरा है। नारायण ने मेरे बेटे के माध्यम से न जाने क्या क्या करवा दिया, वो नारायण जाने। अब इस बात को किस किस को समझाऊं? मुझे तो ये बता कि कन्हैया कब आएगा। आता बोले कि उधव मुंह देखी बात जो तू कर रहा है रहने दे, हम सभी के मंद भागी, नारायण की कृपा का जिनके ऊपर लेश मात्र भी नहीं है। अरे नारायण की यदि कृपा होती तो हमारा बेटा हमसे छूट करके जाता क्या, छोड़ करके? बाबा लोकोत लीला में कह रहे हैं तो नारायण की कृपा हमारे ऊपर रहा है, हमारा बेटा हमको छोड़ करके चला गया और तू कह रहा है कि आ युवाम स्वागतम, क्यों मुंह देखी बात कर रहा है? हम मंद भाग्यों की भी तू स्तुति कर रहा है, तू तो हमको ये बता कि क्या कन्हैया ने कभी कुछ कहा है कि वो कब आएगा? काम की बात बता। इस सहबास में हमको नहीं पढ़ना है कि कन्हैया ब्रह्म है कि नहीं, कन्हैया परमात्मा है कि नहीं, कन्हैया भगवान है कि नहीं, इस बात में हमको नहीं पढ़ना। हमको तो काम की बात बता कि कन्हैया कब आएगा। श्री उद्धव जी एकदम निरुत्तर हो गए और निरुत्तर होकर के बोले कि आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रो भगवान सात्वताम पति। बोल बाबा आगमिष्यत्य दीर्घेण, श्री कृष्ण जल्दी ही लौट करके आएंगे। यदि ये कहूं, उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं कि कृष्ण अभी नहीं आ सकते हैं क्योंकि मथुरा में जरासंध का आक्रमण होने वाला है कुछ ही दिनों में। मुझे गुप्तचरों से सूचना मिली है, मैं तो मथुरा का मंत्री हूं, तो बाबा और ज्यादा घबरा जाएंगे। इसलिए बात को संभालते हुए बोले, जब ये कहूं कि अभी कृष्ण को आने में समय लगेगा, बहुत समय बाकी है, अभी कुछ समय बाद, अभी पहले मथुरा की लीला पूरी हो जाए, इसके बाद में द्वारका की लीला पूरी होगी, रायसूय यज्ञ होगा, रायसूय यज्ञ के बाद में फिर श्री कृष्ण दंत वक्र का वध करके ब्रज लौटेंगे, तब जाकर के आपसे मिलेंगे।
بابا اتنا سہن نہیں کر سکیں گے. آتے بولے بابا کنہیا نے جو آپ سے کہا, شری پربھو نے جو آپ سے کہا, بے شری ہری جلدی ہی آئیں گے. ارے سمے کی بھی کیوں چنتا کر رہے ہو, کالے نہ برج مچتا اچھ کہہ کر کے براجمان ورنن کر رہے ہیں کہ وہ تو سروتا ہی براجمان ہے, اس سمے بھی کوئی تم سے دور تھوڑی ہے. پریم برہاس سے پترو تو ماتا پتا کا وہ اوشی ہی پری کریں گے. جو جگت کا کلیان کرتا ہے, جس نے جگت کا کلیان کرنے کے لیے ہی سرشٹی کی, ان کی جو لیلارتھ سرشٹی ہے وہ لیلارتھ سرشٹی بھی اکرتارتھ جیو کو کرتارتھ کرنے کے لیے ہی ہے. یدپ اس سرشٹی کا کیا پریوجن ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے, وہ اچنتی ہو کر کے برائیمان, پرنتو سامانیہ طور پر پرتھم درشٹیا اس کا ایک کارن سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے جیو کو اپنی شرن میں لینے کے لیے ہی اسے دیہ پردان کیا, بھوگ کی سامگری پردان کی, اور بھوگ کے دوارا بھوگ کی سامگریوں کے دوارا دیہ کی رکشا کرتے ہوئے اس دیہ سے بھجن کر کے اپنے شرارند کو پراپت کرنے کے لیے انہوں نے جگت کی سرشٹی کی. یہ ان کی سرشٹی کا ایک سامانیہ پرتھم درشٹیا اس کا کوئی کارن سمجھ میں آتا ہے. ان کی سرشٹی لیلارتھ سرشٹی ہی ہے, پرنتو وہ سوئم جو آسوادن کر رہے ہیں اس آسوادن سے وہ جیو وہ پربھو اس نرانند جیو کو بھی آنندی کرنے کے لیے جگت کی سرشٹی کر رہے ہیں. اکتارتھ جیو کو کرتارتھ کرنے کے لیے ہی انہوں نے جگت کی سرشٹی کی. تو جو سب کا کلیان چاہ رہے ہیں, جنہوں نے اپنے پرکر کو وشیش روپ سے آسوادن پردان کرنے کے لیے اپنے اوتار کو پرکٹ کیا, اب بھگوان کے اوتار کا پریوجن یہاں پر سنکیت کر دیا شری ادھو جی نے کہ بھگوان کے اوتار کا پریوجن یہ ہے کہ اس اوتار لیلا کو پرکٹ کر کے جگت کے جیووں کو دکھا کر کے جیو اپنا کلیان کر سکیں گے, بھکتی مارگ میں پروت ہو سکیں گے. جیووں کے اوپر کلیان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی لیلا کو پرکٹ کیا, پہلا پریوجن. اس کا دوسرا پریوجن ہو سکتا ہے کہ اپنا جو نج پرکر ہے اس نج پرکر کو بھی اتشے آنند پردان کرنے کے لیے شری بھگوان نے اپنے آپ کو اپنی لیلا کو پرکٹ کیا کہ اتشے اتکنٹھا کو بہاتے ہوئے سوارس کی لیلا کی پرپورنتا کو استھاپت کرتے ہوئے ندوت لیلا کے آنند کو پردان کرنے کے لیے آپ اپنی لیلا کا آسوادن پردان کر رہے ہیں. لیلا دو پرکار کی, ایک لیلا ہے ندوت, ایک لیلا ہے ہردوت. سروور میں لہر اٹھتی تو ہے پرنتو سمندر کے سمان لہر نہیں اٹھ سکتی ہے, ند کے سمان لہر نہیں اٹھ سکتی ہے. ایسے ہی جہاں پر ایک سی لیلا وراجمان ہے, جب وہاں پر بھی اشکالین لیلا ودیمان ہے, وہاں پر بھی کرم لیلا ودیمان ہے. شروع گولوک میں بھی کل کے پرسر میں پرسادن کرائے تھے لیلا کی نشتا میں پرکٹ اور اپرکٹ دونوں ہی لیلائیں سے ہو کر کے براجمان, پرنتو ساری لیلائیں ودیمان ہونے پر بھی کیول گمنا گمن کو چھوڑ کر کے, گمنا گمن کی جو لیلا ہے متھرا جانا اور متھرا سے لوٹ کر کے آنا, وہ لیلا تو کیول پرکٹ میں ہی ہے. انیتھا جتنی بھی لیلائیں ہیں جو شریمد گولوک میں بھی وراجمان ہیں, پرنتو گولوک کی لیلاؤں میں اتنی اتکنٹھا نہیں ہے جیسی اتکنٹھا بھوم ورنداون کی لیلاؤں میں ہے, پرتھوی کی لیلاؤں میں جیسی اتکنٹھا ہے. کیونکہ یہاں پر پورو پورو کا بھی انوسندھان ودیمان ہے, اتکنٹھا وشیش ودیمان ہے. نند بابا وچار کر رہے ہیں ہمارے کوئی سنتان نہیں ہے, اور پھر سنتان ہو تو کتنا آنند آئے. تو یہ جو لیلا ہے بھو ورنداون کی, یہ لیلا ایک ند کے سمان ہے, جیسے کوئی پا بھاری ندی نہیں بلکہ ند بہاتا بہتا ہوا چلا آ رہا ہو, اور وہ جیسے سب کو بہا کر کے لے جائے اپنے رس میں ڈبو دے, ایسے جو پرکٹ لیلا ہے وہ پرکٹ سارس کی لیلا ندوت ہو کر کے براجمان, جبکہ شریمد گولوک کی جو لیلا ہے وہ گولوک کی لیلا منتروپاسنا مئی ہی پردھان ہو کر کے براجمان ہے. وہاں پر پردھانتا منتروپاسنا مئی کی ہے, سوارس کی بھی ودیمان ہے, جبکہ اوتار کال میں سوارس کی لیلا کی پردھانتا ہے منتروپاسنا مئی, یہاں پر گول ہو کر کے آنوسنگک ہو کر کے براجمان ہے. تو رسمئی جو لیلا ہے اس کا جیسا الاس यहां पर विराजमान है। तो परकर को सुख प्रदान करने के लिए अपने जीवों को कृतार्थ से अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने के लिए श्री प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। वैकुंठाद्य नोही जे जे लीला और विस्तार तैसे लीला करेब यहां पे मोर चमत्कार। चरताम का निरूपण कर रहे हैं, बोले वैकुंठ आदि वैकुंठाद्य आदि शब्द के द्वारा गोलोक को भी लिया। बोले गोलोक में भी जिस लीला का विस्तार नहीं है वो सारी लीलाएं मैं करूंगा जिससे जिनके द्वारा मुझे भी अत्यंत चमत्कार की प्राप्ति होगी। तो वो जो अपूर्व स्वारस्यमयी लीला, उस स्वारस्यमयी लीला का आस्वादन प्राप्त करने के लिए आपने अपनी लीला को प्रकट किया है। इसलिए श्री कृष्ण अच्युत होकर के विराजमान है, जैसे उनकी सभी लीला विद्यमान है, परंतु वे जल्दी आएंगे और आप माता पिता को अपूर्व रूप से आनंदित प्रदान करेंगे। भगवान शाश्वताम पति ही, श्री हरि तो श्री कृष्ण तो यादवों के पति हैं। सात्वत शब्द यादव शब्द के द्वारा मथुरा और ब्रज इन दोनों ही परकरों को ग्रहण किया जाता है, क्योंकि श्री हरिवंश पुराण में भगवान ने यह कहा कि हितार्थे यादवा नाम ही धृतो गोवर्धनो गिरी, मैंने यादवों का कल्याण करने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया। तो यादव शब्द ब्रजवासियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो वे सात्वतान पति, वे वैष्णवों के पति हैं। सात्वत माने वैष्णव, सात्वत शब्द का तात्पर्य यादव और यादव का तात्पर्य गोप और मथुरा के यादव वृष्णि, ये दोनों ही यादवों के यादव शब्द के अंतर्गत आते। तो वे उनके पति हैं, वे अवश्य ही कृपा करेंगे। हत्वा कंसम रंग मध्य प्रदीपम सर्वसात्वताम यदाहव समागत्य कृत्यम कृष्ण सत्यम करोति तत्। बाबा, कंस को मारने के बाद में श्री कृष्ण ने आपसे जो कहा था, श्री कृष्ण उस बात को अवश्य ही सत्य करेंगे। कृष्ण ने यह कहा था, बोले बाबा आप ब्रज को लौट करके जाओ, या तो यूएम ब्रजन तातो कल उस चरित्र का वर्णन कराए, क्या आप ब्रज को लौट करके जाओ और हम तुम्हारे इन बंधुओं को कहीं धैर्य प्रदान करके, तुम्हारे इन मित्रों को धैर्य प्रदान करके, हम इन वसुदेव और देवी की इनको कुछ नहीं जानते हैं, बाबा हमारे तो माता पिता तुम हो, या भी ये ब्रजन तातो बहन का स्नेह दुखितान, हम स्नेह में दुखी ज्ञाति वो दुष्ट में क्षाम, हमारे जो जाति वाले आप हो, आपको देखने के लिए आएंगे, विधाय सुहृदान सुखम, ये सुख तेरे होंगे हमारे नहीं। ये भाव कहीं कृष्ण का विराजमान हो रहा है कि तेरे मित्रों को सुख प्रदान करके हम जल्दी से अपने जात वालों को सुख देने के लिए ब्रज में आएंगे। श्री कृष्ण उसे अवश्य ही सत्य करके दिखाएंगे। बाबा मां खिद्यत महाभागो विक्षत कृष्ण मंतिके, हे महाभाग आप नंद यशोदा आप दोनों जरा भी मन में दुख मत करो, श्री कृष्ण को अपने हृदय में ही विचार करो। अंतर हृदय सभूता नाम आस्ते ज्योतिर्वैधशी, जैसे कहीं ईंधन को मथा जाए, लकड़ी को मथा जाए उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही जरा आप ध्यान करो आपके हृदय में अंतर्यामी रूप में वो परमात्मा विराजमान है, वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण को अपने हृदय में आप ध्यान करो। पंत बाबा ने उद्धव के इन वचनों का अर्थ अपने भाव के द्वारा ग्रहण किया। उद्धव ने तो ज्ञान दृष्टि से कहा था, योग की दृष्टि से कहा था कि वो अंतर्यामी सबके हृदय में विराजमान है, उसका ध्यान करोगे तो वो प्रकट हो जाएगा। पंत बाबा अपने मन में विचार कर रहे हैं कि उद्धव कहीं ये तो नहीं कह रहा है कि बाबा आप दुखी मत हो, श्री कृष्ण पास में ही है, कहीं दूर थोड़ी गए हैं, वे मसाई है, जल्दी से अपने हाथ के काम को पूरा करके तुम्हारे पास में लौट करके आएंगे। बाबा अपनी दृष्टि से अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। नहीं है हस्यास्य प्रिय कश्चन ना प्रियो वास्तीय मानना नोत्तमो नाधमो नापी समानस्या समूप वाह। बोले बाबा पढ़ने मेरे बाबा कृपा कर,
কৃষ্ণনাচারী মহারাজ বড়ি কৃপা বহুত অনুভব নাই নাই
শ্রী উদ্ধবজি ব্রজরাজ কো ধৈর্য প্রদান করতে হুয়ে কে রে হ্যাঁ কি বাবা শ্রী কৃষ্ণ তুমারে পুত্র হে ঠিক হ্যাঁ পরন্তু বে কেবল তুমারি পুত্র হো সো বাত নহীঁ হ্যাঁ কৃষ্ণ কে তুমি মাতা পিতা হো সো বাত ভি ঠিক হ্যাঁ পরন্তু কেবল তুমি উনকে মাতা পিতা হো সো বাত ভি নহীঁ হ্যাঁ সচসচ যদি দেখা যায় তো না কৃষ্ণ কা কোই মাতা হ্যাঁ না পিতা হ্যাঁ নহীঁ হ্যাঁ আসে প্রিয় কশ্যপ না প্রিয় বাস্তবে অমানেনা কৃষ্ণ কাজ তুমারে সাথ মে সম্বন্ধ জুড়া হুয়া হ্যাঁ সম্বন্ধ অ্যাটাচমেন্ট জো হ্যাঁ সম্বন্ধ যে জুড়া হুয়া হ্যাঁ সম্বন্ধ কেবল ও দিখা রে তা পিতা শ্রী কৃষ্ণ তো নির্বিকার হোকর বিরাজমান হ্যাঁ বে তো অসঙ্গ হোকর বিরাজমান হ্যাঁ আত্মা তো তত্ত্বত অসঙ্গী হি হ্যাঁ ক্যোকি যে বন্ধন কী প্রাপ্তি হ্যাঁ সর্বদা সর্বদা বেদান্ত মত মাত্র মে উপাধি কো বন্ধন কী প্রাপ্তি হ্যাঁ আত্মা তো নিত্য শুদ্ধ মুক্ত হোকর বিরাজমান আত্মা কে দ্বারা প্রকাশিত হোকর অহংকার হি আপনে আপকো বন্ধন করকে তত্ত্বতা মানে বালা অহংকার অহংকার সেই বন্ধিত হোকর আত্মা সে প্রকাশিত হোকর আপনে আপকো অহংকার বিভূ আত্মা কর্তা হম ইতি মন্যতে তত্ত্বতা অহংকার কো বন্ধন হো রা আত্মা কো বন্ধন কবি নী হোতা আত্মা তো সদা হি নিত্য বুদ্ধ মুক্তি হোকর বিরাজমান তো বে তো অমানি হোকর বিরাজমান বন্ধন সর্বদা সর্বদা উপাধি কো হোতা তো বাবা নই হ্যাঁ আসে প্রিয় কশ্যপ না উনকা কই প্রিয় হ্যাঁ না কই অপ্রিয় হ্যাঁ বাবা জেসে এসে আপ যে উনমে ইতনি আসক্তি রখ রে হো উস আসক্তি কো ইতনি জ্যাদা রখনে কি আবশ্যকতা নেই হ্যাঁ আপনে হৃদয় মে ধ্যান করো উসকে স্বরূপ কা জব ধ্যান করোগে তো বহ তুমসে দূর নহীঁ হ্যাঁ অন্তর্যামী রূপ মে মমতা গন্ধ বর্জিত হোকর আপকে উপর ভি অনুগ্রহ করতে হুয়ে বিরাজমান হ্যাঁ সব সত্যানাশ হো গিয়া যা যে কাহা মমতা গন্ধ বর্জিত কিন্তু শান্ত রস জো হ্যাঁ শান্ত রস কা স্বরূপ হি কি কৃষ্ণ কো পরমাত্মা মানা যায় ও কৃষ্ণ কে সাথ মে মমতা গন্ধ বর্জিত হোকর যা প্রীতি কী যায় উসি কাজ শান্ত রস শান্ত রস কা গুণ মমতা গন্ধ বর্জিত যা মমতা আ যায়গি ওর দাস্য ভাব আ যায়গা শান্ত দাস্য সখ্য বাসল মধুর শান্ত ভাব শান্ত রস মে মমতা নেই হতি জবকি অন্য চার রসো মে মমতা বিরাজমান হতি ব্রজ মে চার রস হি হ্যাঁ দাস্য সখ্য বাসল মধুর যা পর শান্ত রস নেই তো গর্গাচার্য জি ইহা পর নিরূপণ কর শ্রী উদ্ধব জি ইহা পর বর্ণন কর রে কি বর্ণন কিয়া যা রা হ্যাঁ বাবা শ্রী কৃষ্ণ মমতা গন্ধ বর্জিত হোকর সাক্ষী রূপ সে আপকে হৃদয় মে বিরাজমান হ্যাঁ বে কিসি সে ভি অলগ নহীঁ হ্যাঁ বাবা আপ আপনে হৃদয় মে উনকা ধ্যান করো না আত্মীয় না পশ্চাপি না উনকা কোই আত্মীয় হ্যাঁ না পর হ্যাঁ না উনকা দেহ হ্যাঁ না উনকা জন্ম হ্যাঁ কেবল বে আপনে আপকো অভিব্যক্ত মাত্র করতে হুয়ে বিরাজমান হো রে হ্যাঁ বাবা বে কর্ম বন্ধন কে কারণ দেহ মে আয়ে হো এসা নহীঁ হ্যাঁ এসা নহীঁ হ্যাঁ না উনকা কোই কর্ম হ্যাঁ না কর্ম কে অধীন হোকর সদসদ মিশ্র যোনি কো বে প্রাপ্ত কিয়ে হুয়ে হ্যাঁ কে সপ্তগুণ কে কারণ কই দেবতা স্বরূপ মে উনহোনে কবি জন্ম লিয়া হো রজোগুণ কে কারণ কবি উনহোনে মনুষ্য দেহ মে জন্ম লিয়া হো তমোগুণ কে অধিকতা কে কারণ কবি উনহোনে মৎস্য পূর্ব বরাহ আদি রূপ মে জন্ম গ্রহণ কিয়া হো তো উনকা জো ত্রিয়ক অবতার ত্রিয়ক যোনিও জেসে জো অবতার রামকৃষ্ণ রূপ মে মনুষ্য জেসে জো অবতার বামনারিক রূপ মে দেবতাও জেসে জো অবতার দিখ রে হো সদসদ মিশ্র যোনি মে উনকা জো প্রকট হোনা বা সদসদ মিশ্র যোনি মে উনকা প্রকট প্রাকট্য কর্ম কে বশীভূত নহীঁ হ্যাঁ বল্কি বা তো উনকি स्वेच्छा लीला का ही विलाप है। क्रीड़ार्थम सोपी, क्योंकि वे ब्रह्म है इसलिए क्रिया करने के लिए वह अपनी कभी कृपालुता आदि गुणों को प्रकट करते हैं, कभी कृपालुता आदि गुणों को प्रकट न करते हुए केवल साक्षी रूप में ही विराजमान होते हैं। उनके ब्रह्म और परमात्मा रूप की भी अपेक्षा जब वे क्रीड़ार्थ अपनी लीला को प्रकट करते हैं वह स्वरूप अतिशय मधुर और उपासनीय होकर के विराजमान होता है। ब्रह्मोपासना की अपेक्षा परमात्मोपासना में कहीं रस का आस्वादन अधिक, परमात्मोपासना की भी अपेक्षा भगवतोपासना में रस का आस्वादन कहीं अधिक। ब्रह्म एक ऐसा शेष है जिसके पास में अनंत वैभव है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु न तो अपनी एक कौड़ी किसी को दिखाए न एक कौड़ी किसी को दे। उसमें कृपालुता है और लीला, ये दोनों ही गुण आत्म प्रकाशन का गुण भी नहीं है। वृत्ति जो है वो स्वप्रकाशता होते हुए भी, स्वप्रकाशता होते हुए भी वह अपने गुणों का प्रकाशन नहीं करता है, निर्गुण होकर के ही वह विराजमान है। सेठ के पास में धन तो बहुत है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, परंतु अपनी कृपालुता दयालुता ऐश्वर्य आदि गुणों को वह प्रकाशित नहीं करता है। प्रकाशित करने की उसमें वृत्ति नहीं है, उसकी मंशा नहीं है, असमर्थता नहीं बल्कि मंशा नहीं, वो तो सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है तो सर्वसमर्थी, परंतु मंशा नहीं। और उसके पास में जो पहुंचता है उनको भी वो अंधा काना बहरा बना देता है, उनको भी ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि वे भी अपने सब कुछ त्याग करके आते हैं। वे अपनी जो विषय ग्रहण करने वाली वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का भी त्याग करके आते हैं। तो ब्रह्म में अपने आप को प्रकाशन करने की वृत्ति नहीं, और उनका जो ग्राहक है उस ग्राहक चित्त में भी उस चित्तवृत्ति का भी त्याग हो जाए, और चित्तवृत्ति का भी त्याग होकर के ग्राहक ग्रहण करने का जो गुण है वो गुण विद्यमान नहीं है कि उनके गुणों को कहीं ग्रहण किया जा सके। ऐसी स्थिति में ब्रह्म की स्थिति कैसी कि वह सुख का आधार तो है, परंतु सुख रूप तो है परंतु सुख का आधार नहीं बन सकता। श्री बृहद्भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद निरूपण करते हैं कि सुख रूपम सुखाधारम शर्करा पिंडवत स्मृतम। ब्रह्म सुख रूप तो है परंतु सुखाधार यदि वो होता, सुखाधार बन बन करके वह आश्रय विषय रूप में अपने आप का आस्वादन भी करा सकता था, परंतु वह सुखाधार होने पर भी अपनी सुखाधारता को प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए वह आस्वादन का विषय नहीं बन पाता। ज्ञानी जो है वो ज्ञानी अपने आप को स्वतंत्र रख करके ब्रह्म का आस्वादन नहीं कर पाता, ब्रह्म में वह साहित्य मात्र प्राप्त करके अवस्थित हो जाता है, उसके आस्वादन कर सकने की ग्राहकता उसके पास में नहीं है। जबकि ईश्वर में अपने गुणों को प्रकट करने की अभिलाषा भी है, नित्य नित्य अपने स्वरूप को प्रकट भी कर रहा है, और उसके भक्तों में उन आस्वादन को ग्रहण करने की वृत्ति भी उनके पास में प्रभु के द्वारा दी गई चिन्मय जो वृत्ति है वह भी उनके पास में विद्यमान है। अतः बाबा क्रीड़ार्थस्तोत साधु नाम परित प्राणाय कल्पते, उन्होंने क्रिया के लिए ये सारी जो लीला है उन लीलाओं को उन्होंने प्रकट की हुई है। सत्य रजस्तम इन तीनों गुणों में भी श्री प्रभु तभी अपने आप को प्रकट करते हैं। अवतार काल में वे प्रपंच गोचर भी अपनी लीला को कराते हैं, क्योंकि अवतार काल में ही प्रपंच गोचर कराते हैं, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रकट लीला नित्य नहीं हो सकती। एक प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि यदि अवतार यदि प्रपंच लीला प्रपंच गोचर है, प्रकट लीला प्रपंच गोचर है, तो जब तक प्रपंच है तब तक ही तो अवतार लीला प्रकट लीला रहेगी, महाप्रलय काल की क्या स्थिति होगी? महाप्रलय काल में तो प्रपंच नहीं रहेगा, प्रपंच जो है वे सब जाकर के अपने मूल कारणों में अवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, मित्र प्रलय की बात नहीं कर रहे हैं, नैमित्तिक प्रलय की बात नहीं कर रहे हैं, आत्यंतिक प्रलय की जब स्थिति होती होगी उस समय क्या स्थिति होती होगी, जो जिसमें ब्रह्मा का भी लय, जिसमें प्रकृति का भी लय हो जाता होगा उस समय क्या स्थिति हो जाएगी। बोल नहीं, उस समय भी प्रकट लीला विद्यमान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने प्रकट लीला को इसीलिए दोनों स्थितियों में माना, सृष्टि काल में भी माना और प्रलय काल में भी प्रकट लीला विद्यमान है। उस समय श्री योग माया जी योग माया कल्पित ब्रह्मांडों की रचना करके उन योग माया कल्पित ब्रह्मांडों के बीच में कृष्ण लीला को अवस्थित रखती है। जैसे इस समय सृष्टि का समय चल रहा है तो हमारे ब्रह्मांड में कृष्ण लीला नहीं है, कृष्ण लीला हो गई भारतवर्ष में, 28वीं चतुर्युगी में श्री कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण के बाद में श्री गौरव प्रकट हुए, उस समय कृष्ण लीला हो गई, इस समय अवतार काल नहीं है। परंतु क्या इस समय कृष्ण की जन्मलीला नहीं है? बोले नहीं, इस ब्रह्मांड में भले नहीं है, ब्रह्मांड तो अनेक है, किसी दूसरे ब्रह्मांड में होगी। एक ब्रह्मांड में कृष्ण की जन्मलीला हो रही है, दूसरे ब्रह्मांड में कृष्ण का के द्वारा पूछना का वध किया जा रहा है, तीसरे ब्रह्मांड में कहीं त्रावर्त वध की लीला हो रही है, कहीं महाराज भी हो रहा है। इससे जितनी भी लीलाएं हैं वे केवल विनोदार्थ उनका स्मरण नहीं है, बल्कि वे लीलाएं यथार्थ में विद्यमान है और जो विद्यमान है उनका ही हम दर्शन करते हैं, भक्तगण दर्शन करते हैं। तो अनंत कोट ब्रह्मांडों में भी वे लीलाएं क्रम क्रम से भी प्रकट हो रही हैं और किसी ब्रह्मांड में जहां अवतार हो रहा होगा, हमारे ब्रह्मांड में तो हो गया, परंतु जिस ब्रह्मांड में कृष्ण का अवतार हो रहा होगा इस समय वहां पर वहां के श्रीमद वृंदावन में क्रम लीला भी दिख रही होगी। कृष्ण पहले बिल्कुल शिशु होकर के फिर बाल्य लीला में, फिर पौगंड लीला में, फिर कैशोर लीला में भी क्रम क्रम करके विद्यमान होंगे, फिर वहां से गमनागमन भी उनका इन लीलाओं में होगा। तो क्रम लीला भी नित्य है, जो स्वारस की लीला है वो स्वारस की लीला भी नित्य है और मंत्रोपासनामयी लीला भी नित्य है, तीनों ही लीलाएं नित्य हैं। परंतु जहां कोई भी ब्रह्मांड नहीं है, जब महाप्रलय हो जाए उस महाप्रलय की स्थिति में भी श्री लीला शक्ति किसी ब्रह्मांड की रचना करती है और ब्रह्मांड की रचना करके वहां पर भी प्रकट लीला बनी ही रहती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकट लीला नहीं है। अतः वैष्णव आचार्य ने निरूपण किया कि श्रीमद वृंदावन कभी भी नष्ट नहीं होते, श्रीमद वृंदावन चक्र के द्वारा रक्षित होकर के सर्वदा सर्वदा विद्यमान है। सप्तपुरियो भवन्ति तासां मध्ये ब्रह्म गोपालपुरी, श्री वृंदावन जो है वे ब्रह्म गोपालपुरी होकर के श्री मथुरापुरी विराजमान है और वे वृंदावन महाप्रलय के बाद में भी सुव्यवस्थित होकर के विराजमान है। श्री योग माया के द्वारा जो प्रकट लीलाएं विद्यमान है, तो प्रकट लीला सर्वदा सर्वदा विराजमान। तो सत्वम रजस्तमिति भजते निर्गुण गुणान, श्री प्रभु निर्गुण है, अपने निर्गुण वृंदावन श्री गोलोक धाम में तो उनकी लीला हो ही रही है, परंतु त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड के भीतर भी वे अपनी लीलाओं को करते हुए विद्यमान होते ही है, यहां पर भी अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं और महाप्रलय काल में भी त्रिगुण से असंपृक्त होकर के भी त्रिगुण जैसे ही ब्रह्मांड की रचना करके वे लीला ब्रह्मांड के बीच में अपनी लीला करते हुए विद्यमान हो ही रहे। अतः प्रपंच गोचर और प्रपंच अगोचर दोनों ही लीलाएं नित्य नित्य होकर के विराजमान हैं। क्रीडन अतीतो त्रिगुण श्री अक्तिवति हंते च, श्री प्रभु गुणों से स्वयं अतीत हैं, परंतु वे सृष्टि करते हैं, प्रेम को उत्पन्न करते हैं, कभी विरह प्रदान करके विरही जनों को पीड़ा भी प्रदान करते हैं, कभी उनका पालन करते हुए मुसरी के दूत को भेज करके संरक्षण भी करते हैं। तो श्रीयति अवति और हंति, श्रीयति का तात्पर्य है प्रीति उत्पन्न करते हुए दिखते हैं, अवति प्रीत का पालन करते हुए दिखते हैं और प्रीति का संहार करते हुए भी माने विरह प्रदान करते हुए भी दिखते हैं। सृष्टि को भी इसी तरह से सृष्टि पालन संहार करते हुए विराजमान होती है। बाबा आप मोह के कारण ही अपने आप को श्री कृष्ण से भिन्न करके देख रहे हैं, कृष्ण तो आपके हृदय में अंतर्यामी होकर के अभी भी विराजमान है। जैसे कोई किसी चक्री के ऊपर बैठ करके घूमे और चक्री से उतर भी आए तब भी भ्रमर का जो है वह उसे घुमाती हुई दिखेगी, ऐसे ही आप अपने आप को श्री कृष्ण से भिन्न करके देख रहे हैं। तो कितने करते रहे तथात्मा तत्वात्मा करते हम वाहम या स्मृतः, तत्वतः बंधन को प्राप्त करने वाला चित्त है, चित्ते कर्तरी, परंतु आत्मा जो है उससे प्रकाशित होने पर चित्त ही बंधन को प्राप्त हो रहा है, परंतु चित्त अपने आप को आत्मा मान करके चित्त ही मैं ही आत्मा हूं ये मानते हुए लगता ये है, कहता ये है कि आत्मा को बंधन की प्राप्ति हो गई, ऐसा आप मानते। आत्मा के द्वारा प्रकाशित हुआ अहंकार, अहंकार के द्वारा प्रकाशित हुआ चित्त, चित्त के द्वारा विषयों को ग्रहण किया गया। अब अहंकार से प्रकाशित जो आत्मा, जो अहंकार है, आत्मा से प्रकाशित जो अहंकार है वो अहंकार अपने आप को आत्मा ही मान ले, अध्यात्म में उसे अहंकार ने अपने आप को आत्मा ही मान लिया, ये कहने लगा मैं ही आत्मा हूं। जो शुद्ध आत्मा थी वो तो नित्य शुद्ध मुक्त है, परंतु अहंकार से प्रकाशित जो आत्मा से प्रकाशित जो अहंकार हो रहा है वह अहंकार अपने आप को कर्ता करके मान ले, अहंकार अपने आप को आत्मा करके मान ले, ऐसी जो बद्ध आत्मा है वह बद्ध आत्मा कहीं कर्ता करके स्वयं को मानती है, जबकि कर्ता अहंकार ही है। अहंकार विमूलात्मा करता हम इति मन्यते। तो कितने करते तत्वात्मा करते हम वा धिया स्मृतः, तत्वता करता है चित्त, अच्छे बुरे कार्य को करने वाला है चित्त, परंतु बद्ध आत्मा अपने आप को, आत्मा तो नित्य मुक्ति ही है, परंतु चित्त ने आत्मा के साथ में जो तादात्म्य प्राप्त कर रखा है वह बद्ध आत्मा, वह आबद्ध आत्मा अपने आप को कर्ता करके मानती है। बाबा युव रेव नैवायम आत्म जो भगवान हरि ही, आप जो कह रहे हैं कि कन्हैया हमको संभालने के लिए जल्दी से क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो आप ये समझ लो कन्हैया का तो सारा विश्व ही संबंधी है, केवल आप ही का यह आत्मज नहीं है, वह सबका आत्मज है, सबका पिता है, सबकी माता है, सबका ईश्वर होकर के विराजमान है। सर्वेशम आत्मयो यात्मा, पिता माता के ईश्वर है। अतः जो वस्तु पहले दिखी, जो आगे दिखाई देगी, जो पहले कभी सुनी गई, जो भूत और भविष्य है, जो वस्तु छोटी या बड़ी होकर के विराजमान है, बाबा बस ये समझ लो बिना अच्युतात वस्तुतरम न बाच्यम, उन अच्युत के बिना कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वो ही परमार्थ भूत होकर के विराजमान है। ऐसे उद्धव जी जरा से बाबा के ये कहने का इशारा मात्र प्राप्त करके कि मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तौ एहं नरोत्तमौ, कि राम कृष्ण के रूप में मेरे यहां पर ईश्वर ने ही मानव अवतार लिया है, जो काम ईश्वर कर सकता है वो काम मेरे बेटा ने किए, इतना सा मात्र जो कहा था बाबा ने ये बात तो विकलता में कह दी, अपने पुत्र की महिमा के गायन में कह दी, क्योंकि बात्सल्य का यह स्वभाव होता है कि बात्सल्यवान व्यक्ति अपने सामान्य पुत्र में भी जब महनीय गुणों की कल्पना कर लेता है, कहते हैं ना मरे पूत के दांत सोने के हो जाते हैं, तो जब सामान्य स्नेह का ये स्वभाव है, किसी माता से पूछो उसका काना कुबला सा भी बच्चा है वो भी ये कहेगी मेरे बच्चे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है, तो बात्सल्य का ये स्वभाव है कि उसमें अपना पुत्र सबको अच्छा लगता है। ऐसी स्थिति में बाबा बिल्कुल उसी तरह से कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो बिल्कुल ईश्वर जैसा है, मालूम पड़ता है ईश्वर ने ही अवतार ले लिया। इस बात को बाबा ने तो कहा था स्नेह में, और श्री उद्धव जी ने इसी बात को पकड़ करके मन में विचार किया कि बाबा के हृदय में ऐश्वर्य ज्ञान आया है, चलो इस ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा ही बाबा के विरह ताप को मैं दूर कर दूं, इसके लिए पूरा का पूरा ज्ञानोपदेश उद्धव जी ने जो प्रदान किया بابا تو ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ بھیا کون مگز ماری کرے, تو جو بات کہہ رہا ہے یہ بات بالکل سنی سنائی ہے, کوئی نئی بات تم نے نہیں کہی. میرے پاس میں تو برج میں جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا آتا ہے کہ بابا تیرا بیٹا ایشور ہے. بس شری برن دیوتا نے میرے سامنے کرشن کی پوجا کی, اندر نے پوجا کی, برن نے پوجا کی, کبیر نے پوجا کی, سب پوجا کرتے ہیں شری کرشن کی, سب بندنا کر رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے. مجھے تو یہ بتا کہ کنہیا کب آئے گا, کام کی بات بتا. ادھر جی ساری بات سمجھاتے رہے, یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کنہیا ابھی نہیں آ سکتے ہیں. کرشن کے گروہ کا جس میں گائن کیا ان گروہ کے, اور یہ جب کہا کہ کرشن سروتر ودیمان ہے, ان بے سب کے اوپر کرپا کرنے والے ہیں, بابا کے دماغ میں کیول اتنی بات تو آئی کہ کنہیا ہمارا بھی دھیان رکھتا ہے. اتنی بات تو آ گئی کہ کنہیا ہمارا دھیان کرتا ہے, پرنتو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کرشن ایشور ہے. جب بابا نے یہ کہا, بابا سے یہ کہا کہ بابا شری ہری ہی بنا چتا وسترن واچم, وہ ایک کھڑ بھی کسی سے الگ نہیں ہے, بتاؤ تم سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں. بابا کو اچھا لگا کہ کنہیا ہماری یاد کرتا ہے, اتنا سن سمجھ کر کے تو اچھا لگا. اب وہ ان کے بنا کوئی وستو نہیں ہے, وہ سرواشرے ہیں, اس بات کی وہ بابا نے دھیان نہیں دیا. بولے کون مگز ماری کرے, اب تو یہ اس بات کے اوپر بات کرنے کے لیے خود بتاؤں کہ کنہیا کب کنہیا ایشور ہے کہ نہیں. میں تو اس بات کو جاننے کے لیے ساتھ بیٹھا ہوں کہ کنہیا کب آئے گا. اتنی بات ضرور پتا لگ گیا کہ کنہیا ہماری یار کرتا ہے. ایسا کہتے کہتے وہ جو راتری ہے, وہ راتری ایوم نشاسا بروتو ویتیتا, بات کرتے کرتے ہی ویتیت ہو گئی. ادھو جی شری کرشن کے پر تک سوروپ کا نروپن کر رہے کیے جا رہے ہیں کہ وہ سوئم سدھ بھید شونیہ پدارتھ ہیں, وہ اچت ہو کر کے براجمان ہیں, وہ پرچھید سامانیہ اتینت ابھاؤ وقت ہو کر کے براجمان ہیں. برہم کا سوروپ جو ہے وہ سوروپ ہی ہے کہ وہ اس میں وہ کسی سے ڈھکا ہوا نہیں ہے, جو پرچھید سے رہت ہو اور سامانیہ سے رہت ہو, مانے برہم جیسا کوئی دوسرا برہم نہیں ہے, وہ ایک ہے. سامانیہ بنتا ہے, بس سامانیہ تب ہوتا ہے جبکہ ایک سی کئی وستوئیں ہوں. نتیہ ستی انیک سمے تم سامانیہ تم سامانیہ کا کی پرواشائی ہے, جاتی کی پرواشائی ہے کہ جو وستو نتیہ ہو اور کئی ویکتوں میں ودیمان ہو اس کا نام ہے جاتی. گو جاتی کب کہی جائے گی, ایک گائے کے دور ہو جانے پر, انتردھان ہو جانے پر گو جاتی نشٹ نہیں ہوگی, ایک گھوڑے کے مر جانے پر اشو جاتی جو ہے وہ سماپت نہیں ہوگی. تو نتیہ سے جو نتیہ ہو اور انیک سمے تتوم اور انیک ویکتوں میں جو گن ودیمان ہو اس کا نام ہے جاتی. پرنتو برہم میں جاتی بن ہی نہیں سکتی ہے, کہ برہم تو ایک ہی ہے. برہم جیسا کوئی دوسرا ہوتا تو جاتی بن جاتی, برہم جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, اس لیے اس میں سوجاتی بھید نہیں ہے, اس میں بجاتی بھید بھی نہیں ہے. کہ برہم سے بھن کوئی دوسری وستو ہوتی اس لیے برہم جیسے برہم سے بھن کوئی دوسری وستو ہے ہی نہیں, سب وستو برہم کے بھیتر ہی ودیمان ہے, اس لیے بجاتی بھید بھی نہیں ہے. ایک گائے ہے ایک گھوڑا ہے تو ان میں بجاتی بھید ہے, پرنتو سبھی وستوئیں جیسے برہم روپی ہیں تو اس میں بجاتی بھید بھی نہیں ہو سکتا ہے. برہم میں سوگت بھید بھی نہیں ہو سکتا ہے. سوگت بھید کیسا, بولے جیسے یہ برکھ کی ڈالی ہے, یہ برکھ کا پھل ہے, یہ برکھ کا تنا ہے, یہ برکھ کی جڑ ہے, ایک ہی وستو میں جو بھید ہے سوگت بھید. برہم میں سوگت بھید بھی نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ برہمتا تو سروتا پان پاد ہے. بھگوت سوروپ میں یہ نہیں ہے کہ چرن جو ہے وہ کیول چلنے کا کام بھی کریں گے, بھگوت سوروپ میں چرن سننے کا کام بھی کر سکتے ہیں اور نیتر جو ہے وہ سنہار کا کام بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر سب وستوؤں میں سب سامرتھ ودیمان. شری بلواچار چرے جہاں پر چتربھجم شنکھ یوڑھا یوڑھا یوڑھم उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि शंख चक्र गदा पद्म, वहां पर एक प्रश्न उठाया कि भाई चक्र और गदा ये दो तो आयुध है, परंतु आयुधों के बीच में शंख की और पद्म की कैसे गिनती कर ली? उनके द्वारा कहा किसका संहार होगा? श्री बदाचार्य समाधान कर रहे हैं कि शंख जो है वह प्राण तत्व है, और प्राण तत्व होकर के जीव मात्र को चलाने वाला और नाश कराने वाला, शंख के द्वारा दुष्ट जो है उनके हृदय की सामर्थ्य को ही समाप्त करने की सामर्थ्य श्री भगवान में विराजमान है। अतः शंख भी भगवान का आयुध है। केवल शंख ध्वनि मात्र से ही जितने भी शत्रु हैं उनके हाथ पैर फूल जाएं, उनके हाथ से अस्त्र गिर जाएं और मूर्छित होकर के मर भी सकते हैं, कोई कोई तो शंख में सामर्थ्य विद्यमान है, और उनके पद्म में भी ये सामर्थ्य है कि पद्म ब्रह्मांड कमल को, पद्म का जो भ्रमाना है वह ब्रह्मांड कमल को घुमा करके संपूर्ण जगत को अपने काल चक्र के द्वारा नष्ट करते हुए चला जा रहा है। अतः पद्म भी कमल है और पद्म जो है वह भी आयुष है। जहां पर वैभव का स्वरूप का दर्शन किया गया वहां पर शंख चक्र गदा पद्म ये चारों आयुध होकर के विराजमान। तो कहने का तात्पर्य ये दृष्टांत था कि भगवत स्वरूप में स्वगत भेद नहीं है, भगवत स्वरूप में प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक कार्य को कर सकने में समर्थ है, उसमें परिच्छन्नता उसमें परिच्छेदता प्राप्त नहीं है, उसमें सीमितता की प्राप्ति नहीं है। ये अद्भुतता भगवत स्वरूप में विद्यमान। तो श्री